ओम शांति।
जी
मुरली है 16 दिसंबर 1993। 16 दिसंबर 1993 के ग्रुप नंबर 2 है। सभी अपने को सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाली आत्माएं अनुभव करते हो। सदा उमंग उत्साह बढ़ता रहता है या कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, क्योंकि जितना उमंग उत्साह होगा उतना औरों को भी उमंग उत्साह में उड़ाएंगे। सिर्फ स्वयं नहीं उड़ने वाले हो लेकिन औरों को भी उड़ाने वाले हो। तो उमंग उत्साह ये उड़ने के पंख है। अगर पंख मजबूत होते हैं तो तीव्र गति से उड़ सकते हैं। अगर पंख कमजोर होंगे और तीव्र गति से उड़ने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं उड़ सकेंगे, बार बार नीचे आएंगे। तो उमंग उत्साह के पंख सदा मजबूत हो, कभी कमजोर कभी मजबूत नहीं, सदा मजबूत। क्योंकि अनेक आत्माओं को उड़ाने के जिम्मेवार आत्माएं हो, विश्व कल्याण करने की जिम्मेवारी ली है ना, तो सदा इतनी बड़ी जिम्मेवारी स्मृति में रहे। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तब जो भी काम करेंगे तो अलर्ट होके करेंगे। और जब जिम्मेवारी होती है तब कोई भी काम उमंग उत्साह से करेंगे, अलर्ट होके करेंगे। और जिम्मेवारी होती है तो काम जिम्मेवारी से करेंगे, दिल से करेंगे, अपना समझ कर करेंगे। तब तो जो भी काम करेंगे तीव्र गति से करेंगे। और जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेला होते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जरूरी है। तो हरेक के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सभी ने यह जिम्मेवारी का संकल्प लिया है या सोचते हो यह बड़ों का काम है, हम तो छोटे हैं, ऐसे तो नहीं, यह तो पुराने जाने, हम तो नए हैं, ऐसे तो नहीं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, लेकिन ब्राह्मण बनना अर्थात, केशव भाई, ब्राह्मण बनना अर्थात जिम्मेवारी लेना, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन है तो बीके या और कुछ है, तो बीके अर्थात बिक गए, बीके अर्थात माता जी, बीके अर्थात ब्राह्मण बनना, और ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है ही। तो ये जिम्मेवारी की स्मृति कभी भी आपको अलबेला नहीं बनाएगी। लौकिक कार्य में भी जब कोई जिम्मेवारी बढ़ती है तो आलस और अलबेलापन आता है या चला जाता है। अगर कोई कहेगा ना कि चलो थोड़ा आराम कर ले, बैठ जाओ, क्या करना है, तो बैठ सकेंगे? तो जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन खत्म कर देती है। तो जितनी ज्यादा जिम्मेवारी होगी तो आलस अलबेलापन नहीं आएगा। इसके लिए राजकुमार भाई रोज अपने आप को एक जिम्मेवारी देना, नहीं एक्स्ट्रा जिम्मेवारी। तो चेक करो कि कभी भी आलस या अलबेलापन तो नहीं आता। चल तो रहे, हो ही जाएगा, ये है अलबेलापन। आज नहीं तो कल हो जाएगा, ये आलस्य है। जैसे कल कह रहे थे ना, आलस का संबंध शरीर से है, अलबेलेपन का संबंध मन से है, आलस्य का संबंध नींद से है, सुस्ती से है, अलबेलापन अर्थात केयरलेसनेस, आलस अर्थात लेजीनेस, एक का संबंध नींद सुस्ती शारीरिक तल पर हो रहा है, एक दूसरा जो है वो मानसिक तल पर है, अलबेलापन, केयरलेसनेस, गैर जिम्मेवार। कल नहीं, आज भी नहीं, अब, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। जीवन अनिश्चिंत है, किसी का कोई भरोसा नहीं, किसी भी चीज का, कब क्या हो जाए, कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी बन जाए, कोई खबर नहीं। तो क्या सुना? सभी अपने को सदा उमंग उत्साह के पंख, कौन से पंख है? उमंग और उत्साह के, वो भी कैसे चाहिए? मजबूत चाहिए, कमजोर पंख रहेंगे तो उड़ नहीं सकेंगे। तो उमंग और उत्साह, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म होता है तो क्या हो जाता है? किसी एक संगठन में, एक में बहुत ही उमंग उत्साह है, तो वो जैसे बीमारी संक्रामक होती है ना, वो कैसी फैलती है, वैसे ये जो बीमार, ये जो एंथुजियाज्म है, इट स्प्रेड्स, कंटेजियस है, संक्रामक है, ऐसे एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक फटाफट फैलता है। तो जैसे उबासी फैलती है, एक को नींद आने लगी तो उसको देखकर सभी को नींद आने लगती है। जो एक करता है उसको लगता है, दूसरे को लगता है ये शायद जरूरी है, ऐसे भी होता है। वो दिखा दे ना, मुल्ला नसरुद्दीन जो होता है, वो एक बार एक मस्जिद में जाता है और वो बड़ा ही खुराफती होता है। तो वो क्या करता है, सब लोग बैठे रहते हैं लाइन से पूरा, एक के पीछे एक के पीछे, तो आगे वाला जो रहता है उसकी कमीज खींचता है, तो पीछे वाला, आगे वाला पीछे देखता है क्या है, तो कहते नहीं इस मस्जिद का ये नियम है कमीज खींचने का अगले वाले की, तो वो अगले वाले की खींचता है, वो अगले वाले की, थोड़ी देर में देखते तो सारे एक दूसरे की कमीज खींच रहे। मॉब मेंटेलिटी, ट्रेंड। तो वो तो एक दूसरी बात थी, परंतु यहां बात कर रहे हैं हम फैलने की। तो एक में अगर उमंग उत्साह है, एक अगर पावरफुल है, तो वो पावर कैसी फैलती है सब तरफ। तो उमंग उत्साह के पंख अगर मजबूत है तो उड़ सकेंगे, हम अगर उड़ सकेंगे तो दूसरों को भी उड़ा सकेंगे। दूसरों को उड़ाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा अच्छा शब्द है हिंदी का, इंग्लिश का, उसका कुछ और अर्थ भी है। रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का दूसरा अर्थ है। रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्स अर्थात प्रतिक्रिया करना, उसकी क्षमता, प्रति संवेदन की क्षमता, जो क्षमता है। और रिस्पॉन्स किस अवस्था में किया जाता है? जागृत अवस्था में, अलर्ट, सजगता में किया हुआ जो रिस्पॉन्स है, जो क्षमता है करने की, एबिलिटी, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबल होने वाला व्यक्ति हमेशा ही जागृत होगा, सजग होगा, अलर्ट होगा, विजिलेंट होगा, तो होश में होगा। होश का तीर सदा ही चुभा रहे, होश का जो तीर है वो सदा ही चुभा रहे, कभी भी बेहोश ना हो जाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी? स्वयं उड़ना और दूसरों को उड़ाना, स्वयं उमंग उत्साह में रहना, दूसरों को उमंग उत्साह दिलाना, स्वयं को निरंतर इस ज्ञान मार्ग में उमंग उत्साह में रखने के लिए नवीनता की आवश्यकता है। नहीं तो ज्ञान मार्ग में कितनी सारी आत्माएं चलते चलते क्या हो जाती है? थक जाती है, फिर कुछ ज्यादा इच्छा नहीं होती है पुरुषार्थ करने की। पुरुषार्थ करने का उमंग निरंतर ही बना रहे, ज्ञान की गहराई में जाने का उमंग निरंतर ही बना रहे, रोज रोज योग के नए नए प्रयोग करने का उमंग निरंतर ही बना रहे, क्योंकि जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आती रहती है, इसके लिए परिस्थितियों के वश हो जाते हैं या उनके चिंतन में चले जाते हैं। जब परिस्थितियों के चिंतन में जाते हैं तो ये पुरुषार्थ का चिंतन कम हो जाता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इस विश्व की सभी आत्माओं को उड़ाना। और हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कल कर्तव्य बड़ा ही छोटा शब्द है वैसे, यहाँ इंग्लिश के शब्द जरा कुछ कुछ अच्छे हैं, पावरफुल शब्द है, जिम्मेवारी, जिम्मेदारी, जिम्मा। ब्राह्मण आत्माओं की क्या जिम्मेदारी है कमलेश भाई? 10 जिम्मेदारी बताओ ब्राह्मण आत्मा की। परमात्मा संदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना है। जब तक सभी आत्माओं को संदेश नहीं मिल जाता, हम चैन से नहीं बैठ सकते, हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस संसार की हर आत्मा का मिलन जब तक परमात्मा से नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठ सकते। और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे विश्व परिवर्तन करना, विश्व कल्याण करना। और इस धरा पर स्वर्ग ला के रखे रहेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। और आत्माओं में शक्ति भरना, आत्माओं को दुखों से मुक्त करना, आत्माओं को अशांति से मुक्त करना, आत्माओं को भय से मुक्त करना, अभेदान देना इस संसार की आत्माओं को, निर्जीव आत्माओं में शक्ति भर देना, सुरजित कर देना, और सभी आत्माओं को संतुष्ट करना, तृप्त करना, जन्म जन्म से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने देना, ये हमारा कर्तव्य है। और प्रभाकर भाई क्या हमारा कर्तव्य है? प्रकृति को भी पावन बनाना, प्रकृति भी थक चुकी है, इस प्रकृति को भी तरोताजा करना, ये हमारा कर्तव्य है। हिम्मत की एक टांग संसार की आत्माओं के पास है, दूसरी हमें देनी है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इस यज्ञ की संभाल करना, इस यज्ञ को निर्विघ्न करना, इस यज्ञ की एक भी आत्मा इस यज्ञ से बाहर ना जाने पाए, अगर जाती है तो वो हमारी जिम्मेवारी, वो हमारी कमजोरी है, हमारा दोष है वो। किसने? कुमारों को संभालना, मेहमानों को कि कुमारों को? कुमार और कुमारिया तो कुमारों को संभाल के रखना, अच्छा पॉइंट है।
कुमार नहीं जाने चाहिए,
कुमार जाने नहीं चाहिए, कुमार शोभा है, सेंटरों की भी शोभा है, तो उनकी आते ही थोड़े तो उनको जरा प्यार से जरा संभाल के रखना पड़ेगा। हाँ, तो कुमारों को संभाल के रखना। कई कई सेंटर है जहाँ कोई भी कुमार नहीं है, कई है जहाँ पर इतने कुमार है। वहाँ पर निर्भर है किस तरह की पालना उन्हें मिल रही है। एक ही कुमार बहुत है, एक हो जाए तो दुनिया हिला सकता है, इतनी पावर है उसमें, अनंत शक्तियां समाई हुई है, इतना अगर उसमें उमंग है, अथक बन जाती है आत्मा, कुछ भी कर सकती है, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो सेंटर में, अगर एक ही हो तो उसकी पावर भी बढ़ जाती है। फिर से वापस लेके आना, ये भी ब्राह्मणों का कर्तव्य है, जो भी चले गए। हाँ, ज्ञान की चर्चा करना, ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान का अनुभव करना, ज्ञान को फैलाना, ज्ञान की गहराई में जानना, उसको समझना, उसी अर्थों में जिस अर्थों में बाबा ने कहा हुआ है, भाव को समझना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कमल भाई, ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य है? अपनी कमियों को निकालना, स्वयं को संपन्न बनाना, भरपूर बनाना, कुंभकर्णों को जगाना, पहले तो अपने अंदर के कुंभकर्ण को जगाना, वो कल परसों किसी ने भेजा था, वो शायरी के जैसा याद तो नहीं है, कि रावण को तो मार दिया कुंभकर्ण, रावण को मार दिया, मेघनाथ को मार दिया, ये कुंभकर्ण कंबक्त ऐसा है कि उठता ही नहीं ऐसे कुछ आया था सबको खत्म कर दिया, ये कुंभकर्ण ही बस बाकी है जो उठने का नाम नहीं लेता जब तक इस संसार की सभी आत्माओं का कल्याण हम न कर दे, तब तक हम चैन की नींद नहीं सो सकते। वो महात्मा बुद्ध के लिए दिखाते हैं शायद काल्पनिक है, चाहे काल्पनिक हो या कुछ भी हो, सीखने की बात है उसमें से। मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं, शरीर को छोड़ दिया, महानिर्वाण जिसको कहते हैं, पद को प्राप्त किया, अब मोक्ष के द्वार पर खड़े हुए हैं। द्वारपाल वहां पर है, कह रहा है कि आओ, आपके लिए तो द्वार खुले हैं मोक्ष के। वो कहता है मैं नहीं आऊंगा। क्यों? वो कहता है मैं नहीं आऊंगा अंदर। वो बोलता है 40 साल से आपके लिए द्वार खुले हुए हैं। 40 साल पहले ही उसे सत्य की प्राप्ति हो चुकी थी बोधि वृक्ष के नीचे, तब से द्वार खुले हैं आपके लिए, परंतु फिर भी 40 साल आप धरती पर रहे, अब तो शरीर भी छूट गया, अब तो आओ। वो कहता है मैं नहीं आऊंगा। क्यों? आई विल बी द लास्ट टू एंटर द गेट्स ऑफ लिबरेशन। जब तक इस संसार की हर एक आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक मैं नहीं रुकूंगा और ना ही मैं अंदर जाऊंगा। मैं सबसे अंतिम प्रवेश करूंगा, मेरे पहले सब जाएंगे और मैं अंतिम प्रवेश करूंगा, तब द्वार बंद होंगे। वो रुका भी इसीलिए इस धरती पर। दो रीति से जो अवतार होते हैं, प्रज्ञावान पुरुष होते हैं, जागृत पुरुष होते हैं, जिनकी चेतना संपूर्ण जगी हुई है, वो कभी सोते ही नहीं। बचपन से ही उनको अपनी जीवन के कार्यों का पता है। कई है उनको बाद में पता चलता है जब ज्ञान में आए, कई है जो सोए हुए है ही नहीं, निरंतर ही जागृत अवस्था में। जन्म से ही उन्हें संपूर्ण स्मृति रहती है, मैं किस लिए आया हूँ, पूर्व जन्म की साधनाएं तपस्या का संपूर्ण स्मरण रहता है। वो जिस घर में है उनको लगता है ये घर मेरा नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो किसी और कार्य के लिए आया हूँ। यह पूर्व जन्म की संपूर्ण स्मृतियां, ऐसी जो आत्माएं होती है महानतम, उनको सारी ही स्मृतियां होती है। जैसे आदि शंकराचार्य का दिखाते हैं बचपन से ही स्मृतियां है, तो ये सारी ही स्मृतियां रहती है। तो वो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि उसको जैसे ही संपूर्ण ज्ञान जो प्राप्त होता है कि संसार में दुखों का कारण क्या है, तभी वो छूट सकता था, उसका शरीर और जा सकता था, परंतु वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब तक संसार की सभी आत्माओं का कल्याण नहीं कर लेता, जब तक सभी आत्माओं को सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं करा देता, सभी आत्माओं को दुखों से नहीं छोड़ा दूंगा, तब तक मैं खुद अकेला नहीं जाऊंगा। ये स्वार्थ होगा जाना। इसके लिए हमारा कर्तव्य भी क्या है, संसार की सभी आत्माओं को यह ज्ञान दे देना। ऐसा कहते हैं कि संसार की बहुत सारी महान आत्माएं हैं जो अभी भी भटक रही है, आसमान में घूम रही है, विचरण कर रही है, परंतु उन्हें गर्भ नहीं मिल रहा है, अच्छा गर्भ। ऐसे माता पिता जो योगी है और तपस्वी है, क्योंकि ऐसी आत्माएं किसी भी माँ बाप के, किसी भी माँ के गर्भ में नहीं चली जाएगी। तपस्वी जो है ऐसे ही गर्भ में वो प्रवेश करती और प्रवेश करने के तुरंत बाद अपनी साधनाओं को आरंभ कर देती, जागृति रहती है जैसे सदैव। बाकियों की चेतना तो सोई पड़ी रहती है, फिर कभी कुछ होता है तो जागती है थोड़ी, फिर सो जाती है, फिर जागती है। जो श्रेष्ठतम आत्मा है वो कभी सोती नहीं है, निरंतर जागरण की अवस्था होती है। तो जिम्मेवारी, तो जिम्मेवारी उमंग उत्साह के पंख कैसे हो, मजबूत हो, तो हम उड़ सकेंगे। उड़ना स्वयं को भी है, दूसरों को उड़ाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आगे कल नहीं, आज भी नहीं, अब, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। अगर अधूरा पुरुषार्थ रहेगा तो कहां पहुंचेंगे, चंद्रवंश में या सूर्यवंश में? आधा पुरुषार्थ रहा तो प्रारब्ध भी आधी मिलेगी, तो चंद्रवंश में जाना है, नहीं जाना है, कोई एक भी नहीं जाएगा। माता है तो सभी सूर्यवंशी बनेंगी। अच्छा, क्योंकि जब पाना है तो पूरा ही पाए ना, आधा पाना तो समझदारी नहीं है। समझदार सदा ही स्वयं को पूरा अधिकारी बनाएगा, क्योंकि बच्चा अर्थात अधिकारी। तो ऐसे अधिकारी आत्माएं हो या कभी कभी थक भी जाते हो, अधिकारी अधिकार लेते लेते थक तो नहीं जाते, कभी मन में थक जाते हो, कहां तक करेंगे? अथक है, थकने वाले नहीं। थकना काम किनका है? चंद्रवंशियों का, और अथक रहना ये सूर्यवंश की निशानी है। माताओं का क्या भी हो जाए लेकिन सदा अथक, अनडीफटिगेबल, जो कभी ना थके, अनडीफटिगेबल, जिसको फटी करता थकान, जिसको उमंग उत्साह होता है वह कभी थकता नहीं है। थकते कौन है? जिनमें उमंग उत्साह थोड़ा कम है वो थकते हैं। उमंग कम होगा तो थकावट जरूर होगी। उमंग उत्साह वाले सदैव चेहरे से औरों को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं। एक है चेहरा, दूसरा है चलन। तो अपने चेहरे और चलन से सदा औरों को भी उमंग उत्साह में बढ़ाते रहो। ऐसी चलन हो जो कोई भी देखे तो सोचे, क्या सोचे? पता नहीं ये लोग थकते नहीं क्या, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, किस खेत की मूली है पता नहीं। ये उमंग उत्साह से सदा कैसे रहते हैं, ये प्रश्न है कि पुरुषार्थ का उमंग कम कैसे नहीं होता है। चलो एक बार मुरली ठीक है पढ़ ली, अच्छे से पढ़ ली, याद भी कर ली, पर हमेशा ही अच्छे से पढ़ना, हमेशा ही ज्ञान में इंटरेस्ट लेना, ये कैसे होता है? थोड़ा थोड़ा ले लिया, कभी कभी लगे ही रहते हैं, जब देखो तब पढ़ते ही रहते कुछ ना कुछ, क्या है ये? कभी तो आराम करना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स, एक दिन छुट्टी, थोड़ी ज्ञान योग से छुट्टी लेते हैं ना लोग, ज्ञान योग से थोड़ी रिलैक्सेशन के लिए। तो जैसे कोई बहुत खुश रहता है तो उसको देख करके दूसरे भी खुश हो जाते हैं, कोई रोने वाला होता है तो रोने वाले को देखकर, रोने वाले को देखकर, देखकर दूसरे क्या करेंगे? अगर रोएंगे नहीं तो मुस्कुराएंगे भी नहीं। जो सदैव रोते रहते हैं ना, कुछ कुछ हमेशा कंप्लेंट्स, आज ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसने ये किया, उसने वो किया, यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, ये चाहिए था वो नहीं है, हर बार कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स, कंप्लेंट बॉक्स इंग्लिश में उनके उनको कहते हैं, कंप्लेंट बॉक्स, हाँ, शिकायत की पेटी। शिकायत पेटी खोलने की देरी है बस, खोलो और चालू। ठंड बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत है, नीचे कैसा है? नीचे ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। नीचे गए तो वहाँ वो ठीक नहीं है, ये डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, यहाँ के टाइमिंग ठीक नहीं है, ये इंचार्ज ठीक नहीं है, यहाँ के साथी ठीक नहीं है, ये लोग ही अच्छे नहीं है, इससे तो बाहर वाले ठीक है। तो आपकी चलन और चेहरा ऐसा है, फलक से जवाब दो। क्या हम नहीं होंगे तो कौन होंगे? फलक से, नशे से, कल्प कल्प के आप ही और सदा ही रहेंगे, यह पक्का निश्चय है ना? तो हम ही थे और हम ही रहेंगे, पक्का है ना? जब सीजन ही उड़ने की है, उड़ने की सीजन चल रही है, विजय की सीजन, उड़ने की सीजन, विजय का मौसम है, तो उड़ने के समय पर गिरना तो अच्छा नहीं होता ना। सब उड़ रहे और हम गिर जाए कितना बुरा लगेगा। तो उड़ने वाले हैं और उड़ने उड़ाने वाले हैं, स्वयं उड़ना और उड़ाना। कभी भी कोई भी बात आए तो याद करो, हम कौन है, हमारी क्या जिम्मेवारी है। तो क्या सुना? सबसे पहले तो पंख चाहिए, दो पंख, उमंग और उत्साह के पंख। वो भी कैसे चाहिए? मजबूत चाहिए, शक्तिशाली पंख चाहिए। काम काम करना, ऐसा नहीं कि काम टाइम पे काम ना करे, और दोनों चाहिए, और मजबूत तो उड़ सके, खुद उड़ेंगे तो दूसरों को उड़ाएंगे। और जिम्मेवारी के लिए क्या कहा? अपने आप को क्या समझो, ये हमारी जिम्मेवारी है सबको उड़ाना। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है तो थकते नहीं है। थकान के तीन तल होते हैं, ये एक दूसरी फिलॉसफी है। थकान जो होती है तीन तल होते हैं थकान के, एक दैनंदिक थकान, दूसरी होती है जिसको कहते हैं, तीसरी होती है जागतिक, और दूसरी का नाम है आपत्कालीन। ये ऊर्जा जो है सबसे पहले दैनंदिक, अगर हम कुछ काम करते हैं तो थक जाते हैं, ठीक है, शरीर थक जाता है कि ये किया वो किया थक गए। अभी किसी ने कहा कि चलो ये काम करते हैं, यहाँ चलते हैं, नहीं नहीं मुझे नींद आ रही है मैं थक गया हूँ। फिर कहा अगर तुम्हारे घर को आग लग गई है तो कहाँ है थकान, वो है आपत्कालीन तल, जिसमें शक्ति बढ़ जाती है। अभी सो रहे थे, इतनी नींद आ रही थी कि बस अभी तो मैं उठ ही नहीं सकता, अभी बस सोना ही है, तुरंत किसी में तुम्हारे घर में आग लग गई है, कहाँ है थकान, उठ के भागेंगे, या भूकंप आ रहा है या कुछ हो रहा है तो फटाफट भागेंगे। वो जो है जैसे कि वो अंदर समाया हुआ था, वो एक अंदर ऊर्जा थी जो एकदम जागृत हो गई अचानक से, तो वो दूसरा तल है जिसमें ऊर्जा के तल या जिसके कहो। तो पहला जो है वो है, और दूसरा ही ऊर्जा का तल जो है वो और एक है। जैसे अगर हमको कहे कि इधर अनादरा से हमको नीचे उतरना है और उधर जाना है अकेले, वो कहेंगे बाप रे अकेले अकेले कैसे जाएंगे, पर कहो कि नहीं 10 लोग हैं और साथ साथ चलना है, संगठन है, समूह है, तो फिर हम सोचेंगे ये लोग चल रहे मैं क्यों नहीं चल सकता, और ये लोग भी उतने ही थके जितने मैं थका हूँ। चलते चलते दोपहर हो गई, दोपहर को पहुंचे अनादरा और दोपहर को अब नीचे उतरना है, तो हम पहले ही घूम के आए, परंतु सब में इतनी पावर है, सब चल रहे, तो हमारे यहाँ इज्जत का सवाल रहता है लोग कहेंगे इतना कमजोर, वैसे तो बहुत ही डिंगे आगता है, मैं ये हूँ ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो यहाँ पर फिर एक वो शक्ति आ जाती है एक दूसरों को देखकर। ये है समूहों को देखकर, एक कहा कि आपत्कालीन स्थिति में जैसे शक्ति जागृत हो जाती है, ये है उमंग उत्साह देखकर, दूसरों का उमंग उत्साह देखकर हम भी आ गए। एक तीसरा तल है, वो है जागतिक तल, वो आत्मा के तल होता है। जब वहां आत्मा जागृत हो जाती है, जिसको बाबा कहते हैं कि अगर आत्माभिमानी स्थिति में यहां से आबू रोड भी चले जाओ तो थकेंगे नहीं, वो एक तल है। तो पहला तल है दैनंदिक शारीरिक तल, शरीर के तल पर है वो, और दूसरा है थोड़ा आपत्कालीन या संगठन का, या यहाँ जिम्मेवारी होती है। तीसरी और एक बात है यहाँ पर, एक आपत्कालीन स्थिति दूसरों को देखकर और रिस्पॉन्सिबिलिटी तब दी जाती है, कल पेपर है आज, कल इधर मुरली सुनानी है, सारे दिन भर बिजी थे, अभी नींद आ रही है तो भी नींद उड़ के कुछ भी करके उसको पढ़ के कुछ ना कुछ करके सोएंगे, क्योंकि इधर इज्जत का सवाल है, दूसरा ऑप्शन भी है आना ही नहीं वो थोड़ा सा जाओ ही नहीं मैं बिजी था, सिर दर्द, ठंड, पेट दर्द, पीठ दर्द, ये दिखता थोड़ी है, सिर दर्द है दिखता थोड़ी है, पेट दर्द है कहाँ, इधर तो वो एक। और तीसरा जो तल है जागतिक तल, इस तल पर जब आत्मा सक्रिय हो जाती है, जब जागतिक तल सक्रिय हो जाता है, तब थकान नहीं रहती है, कितना भी कार्य कर सकते हैं हम, कितना भी वो दूसरी बात है परंतु ये बता रहा हूँ कि थकान जो है ये संकल्प है वास्तव में, ये यहाँ पर है। अगर हम आत्मा अभिमानी स्थिति में रहे, परम धाम में रहे, कहाँ है कि थकान, वही स्थिति में सारे कार्य करो तो थकान नहीं हो सकती है। अच्छा, तो ओम शांति। इसके लिए आत्मिक स्वरूप का